ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः यो स्योत्प्रेक्षकवादिमध्य निधने यो व्यक्त जीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्तिता यं संपद्य जहत्यज मनुषै सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयो निमभयं ध्यायेदजस्रं हरिं हृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। भगवान ने गीता में पांचवें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति मुझे सभी प्राणियों का सुहृद मानता है उसको बड़ी शांति मिलती है। भगवान को सुहृद माने बिना और चीजों को हम अपना मानते हैं परंतु फीकापन लगता है। कितना भी धन मिले, कितने भी इज्जत मिले, कितना ही ऊंचा पद मिले, कितना ही मान मिले, परंतु मन में एक अधूरापन रहता है। ऐसा लगता है अभी मिलने वाली चीज मिली नहीं है। और एक भगवान को स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद किसी की गर्ज नहीं रहती। देखो, एक बात है कि हमको नित्य प्रति अपने आप के विषय में विचार करना चाहिए। मेरे अंदर क्या इच्छा है, मैं क्या चाहता हूं? मैं धन चाहता हूं, इज्जत चाहता हूं, प्रतिष्ठा चाहता हूं, संसार के भोग चाहता हूं, क्या चाहता हूं? मेरे अंदर अच्छी इच्छा है या मेरे अंदर बुरी इच्छा है? ये अपने आप के अंदर झांक करके देखना चाहिए। सही निर्णय अपनी इच्छा के विषय में हम स्वयं ही कर पाएंगे। यदि संसार की इच्छाएं हैं तो उन इच्छाओं को बिल्कुल आप भगवान पर छोड़ दीजिए। इच्छा का त्याग करना हमारे लिए कठिन मालूम होता हो तो भगवान पर छोड़ दीजिए। महाराज जी ने तो एक बात और कही कि एक तो इच्छा की पूर्ति करना और एक इच्छा का त्याग करना, इन दोनों में अपने लिए सुगम काम कौन सा है? क्या इच्छा की पूर्ति हम कर सकते हैं? क्या इच्छाओं की पूर्ति कभी किसी की हुई है? क्या इच्छा की पूर्ति के लिए हमें मानव शरीर मिला है? क्या ये संसार भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही है और इसका कोई दूसरा काम नहीं है? इन सब बातों के उत्तर में यही आएगा कि इच्छा की पूर्ति हम कर नहीं सकते हैं। तो क्या इच्छाओं का त्याग कर सकते हैं? त्याग कर तो सकते हैं पर त्याग कठिन है। अब इच्छा की पूर्ति तो संभव नहीं और इच्छा का त्याग कठिन है, तो असंभव और कठिन इन दोनों में सुगम क्या है? इन दोनों में तो कठिन सुगम होता है। इच्छाओं का त्याग और एक इच्छाओं की पूर्ति, उसमें पूर्ति तो संभव ही नहीं है और इच्छाओं का त्याग ये कठिन है, तो असंभव से कठिन सुगम होता है। तो इच्छाओं को यदि हम कठिन मानते हैं, त्याग कठिन मानते हैं, तो अपनी इच्छाएं भगवान पर छोड़ दो। और भगवान की जो इच्छा हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से, उधर हम विचार करें। भगवान कहते हैं ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तुम मुझे अपना सुहृद मान लो, सुहृद, मैं तुम्हारा परम सुहृद हूं। भगवान देखो कैसे कैसे के लिए करते हैं। एक पहलवान था, उसने अपनी एक बात बताई, कल्याण में उसका लेख आया कि मैं छोटा था तब से ही खूब अच्छा खाता पीता, पहलवानी करता था, तो एक सेठ को मेरी जरूरत पड़ी। तो सेठ ने कहा कि तू हमारे साथ रहे, तेरे जैसा एक पहलवान मेरे साथ रहे तो हमें कोई रास्ते में खतरा नहीं हो। उसकी वहां पर वेतन भी था और वो घर का सदस्य सा ही हो गया। कहा कि मैं बचपन से आर्य समाज की विचारधारा में था, मुझे राम कृष्ण ये सब कुछ नहीं, ये सब फालतू की बात लगती थी। तो सेठ साहब थे बड़े धर्मात्मा, उनके यहां कई प्रकार के आयोजन होते ही रहते थे, कभी पूजन का है तो कभी यज्ञ का है तो कभी कथा का है तो कभी क्या है, ऐसे आयोजन होते रहते थे। पहलवान ने कहा कि मैं उस आयोजन में बराबर हिस्सा लेता, खूब काम करता, लेकिन मैं कृष्ण को राम को इनको मानने में बिल्कुल दूर रहता। कई बार मुझे सेठ ने भी कहा, ऐसे करते करते वहां पर एक पंडित जी थे जो सेठ के वहां पूजा करते थे, वो पंडित जी भी मुझे कई बार राम कृष्ण के बारे में बोलते तो मैं वापस उनकी बात को बुरी तरह से काटता था। कई कई बार तो मैं पंडित जी पर बिगड़ गया और कृष्ण के लिए और के लिए बहुत अंट संट बोलने लगा। मेरे मन में श्रद्धा ही नहीं थी, मैं क्या करूं। एक दिन कोई रात की बात है, मैं सोया हुआ था और वहां पंडित जी भी सोए हुए थे थोड़ी दूर पर ही, तो मैं एकदम जगा तो वहां मैंने 9-10 वर्ष का एक लड़का देखा। मैंने उसको पूछा, रे तू कहां से आया है रे? तो वो मेरी तरफ देखे और वो हंसे, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये भी कोई बात है, हम पूछ रहे हैं, ये हंसी की दिल्ली कर रहा है। मैं बैठ गया और मैं बैठ करके कहने लगा, आप बोल क्या बात है, तू कहां से आया है, कौन है? तो वो क्या करे कि पंडित जी के खाट के चारों तरफ दौड़े, तो मैं पकड़ने के लिए दौड़ा तो मैं भी दौड़ा उसके पीछे पीछे, वो मेरे हाथ ही नहीं आए। अगल बगल में और लोग भी सोए, सब जगह क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पहलवान जी आज क्या माथा खराब हो गया, रात्रि में घूम रहे हो, चक्कर खा रहे हो? वो कह, मेरे को तो दिखे और वो दिखे नहीं, अरे छोकरा घूम रहा है यहाँ, पकड़ो इसको, हंसता हो रहे, कहाँ छोकरा है, फालतू की बात करते। पंडित जी भी उठ गए और वो छोकरा घूमते घूमते आके पंडित जी की गोद में बैठा और चला गया, अदृश्य हो गया। तो पंडित जी ने कहा कि वो कृष्ण भगवान ही थे, किरकाय का कृष्ण भगवान है, मैं नहीं मानता। कुछ दिन और बीत गए तो सेठ का लड़का कहीं ननिहाल गया हुआ था, तो गांव के अंदर एक मंदिर था, वहां पर उत्सव हो रहा था, तो उस उत्सव के अंदर वो भी शामिल हो गया हुई। वहां पर एक उसी सेठ के लड़के को देखा, पहलवान ने पूछा, रे तू कब आ गया, ननियाल गया हुआ था, कब आया? कि मेरे को तो आया, मैं परसों आया, 2 दिन हो गए। तो झूठ बोलता है, मेरे को झूठ बहुत बुरी लगती है। पहलवान ने कहा कि मैं बचपन से ही 2 बातों पर ध्यान रखता था, एक तो सत्य बोलना और एक ब्रह्मचर्य का पालन करना, 2 पर मैं सदा कायम रहा, तो मेरे को असत्य बहुत बुरा लगा। झूठ बोलता है तू? तो वो मेरे को देख करके हंसा और भगने लगा वैसे ही, तो मैं भी भगने लगा। भगते भगते वो उसी सेठ के घर में घुस गया, तो वो पहलवान भी अंदर अपने घर में जाना ही था, और उसने पूछा, रे अभी वो सेठ का लड़का आया था ना, कि यहां तो नहीं आया, वो तो ननियाल गया वही है ना? अरे अभी अभी आया है मेरे सामने से, अभी अभी आया है। कि नहीं आया है, सब मकान को ढूंढ लिया, नहीं मिला। पहलवान को वो लड़का नहीं मिला। कहा कि तेरे पर कोई भगवान की कृपा हो गई है, तेरे को भगवान ने दर्शन दिए हैं, वो भगवान ही है, कि मैं नहीं मानता। 2 बार चांस हुआ, फिर एक बार पंडित जी के पास बैठा, उसने भगवान की खूब निंदा की, और फिर उसके बाद में अकस्मात भगवान के साक्षात दर्शन हुए, तब जाकर के वो कहा, अब मेरे को विश्वास हो गया। तो भगवान भगवान जो है वो प्रत्येक प्राणी के सुहृद है, तो प्रत्येक प्राणी में तो अपने भी आ गए, हमारे भी सुहृद है वो। ये जो सबका होता है ना, बताया आपको, सबका होता है वही अपना हो सकता है, जो किसी का हो और किसी का नहीं वो अपना नहीं हो सकता। किसी के पास हो और किसी के पास ना हो वो अपना नहीं हो सकता। अपने की परिभाषा वही है जो सबका है। संतों को महात्माओं को तो भगवान मिलते हैं, लेकिन ऐसे पहलवान को कि जो भगवान को मानता नहीं था, उसको भी देखो भगवान ने दर्शन दिए, भगवान उनके हैं इसलिए दर्शन दिए ना। तो भगवान ने हम सबको स्वीकार कर रखा है, हमने ही भगवान को स्वीकार नहीं किया। भगवान पर हमारा विश्वास ही नहीं जमता, बताओ। विश्वास क्यों नहीं जमता? कि हमने विश्वास करने की ताकत को कहीं और लगा दिया, अब कैसे विश्वास हो? इंद्रियों पर हमने विश्वास कर लिया, इंद्रियों से दिखेगा उसको मानेंगे, बुद्धि से समझ में आएगा उसको मानेंगे, मन से समझ में आएगा उसको मानेंगे तो नहीं मानेंगे। भगवान है वो मन बुद्धि इंद्रियों के विषय नहीं है, भगवान तो विश्वास के विषय। विश्वास रखना होगा भगवान पर। जितना भगवान में हमारा दृढ़ अविचल विश्वास होगा उतना ही जीवन में शांति मिलेगी। सुरिदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। आज सबका हृदय अशांत है, घर घर में अशांति है। हिंदू धर्म में जन्म लेने वाला और सनातन पद्धति से जीने वाला आदमी, उसके भी मन में यदि अशांति रहेगी तो शांति कहाँ मिलेगी? क्योंकि ये अपना हिंदू धर्म है, इसमें जितना भगवान का आदर हुआ है इतना आदर और धर्मों में इतने ढंग से नहीं हुआ है। और धर्म वाले कोई भगवान को नहीं मानते हैं ऐसी बात थोड़ा ही है, भगवान को वे भी मानते हैं, परंतु अपने यहां तो भगवान को सर्वव्यापक सर्वानुस्यूत सर्व विराजमान सर्वव्यापक निर्गुण सगुण निराकार साकार सर्वाकार, भगवान के बिना तो कुछ है ही नहीं। यहां एक भगवान की ही सत्ता मानी जाती है, और की सत्ता है ही नहीं। ऐसे भगवान के रहते हुए अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग होए दुखारी। और उस परमात्मा के साथ हमारा नित्य संबंध है। एक संतों ने कहा कि भगवान के मिलने में कितना समय लगता है, तो कहते हैं 100 पत्ते हों कमल के, उनके बीच में आप सुई लगाओ, कमल के पत्तों को सुई उनमें पार करो, तो एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर वो सुई निकलेगी ना, इतने देर में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अब 100 कमल के पत्ते उनमें सुई लगाओ तो कोई समय है क्या? उसमें सेकंड से भी कम समय लगता है, तो समय से अतीत है वो बात। कहने का अर्थ है कि भगवान कभी भी समय को नहीं देखते। नहीं मिलेंगे तो लाखों जन्मों तक नहीं मिलेंगे, लाखों वर्षों नहीं लाखों जन्म। और भगवान की यदि इच्छा होगी तो भाई इच्छा हो जाने पर फिर भगवान कितनी देरी में मिलते हैं कितने जल्दी मिलते हैं तो वो महापुरुष ही जाने। परंतु भगवान के मिलने की इतनी जरूरत नहीं जितना हमारे भगवान पर विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विश्वास हो। जन्म कोटि लग रगर हमारी, वरऊ शंभु नतु रहूं कुमारी। 100 जन्मों तक करोड़ जन्मों तक मेरे तो जन्म कोटि सत लगे हमारे जन्म, हमारे कितने ही जन्म हो जाए मेरी लगन एक भगवान की रहेगी, शंकर भगवान ही मेरे पति बने। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, वरऊ शंभु ने तो रहूं कुमारी। हम देखो एक ही एक दुनिया में रहते हैं, संसार का जो वातावरण है ना उसी उसी में रमे रहते हैं। इस संसार का व्यवहार बाहरी बाहरी का है, हो ये बाहरी बाहरी का व्यवहार है, इसमें उलझना नहीं चाहिए। बाहर का बर्ताव बाहर के ढंग से कर दिया, बस उलझना नहीं चाहिए इसमें। भीतर की दुनिया में झांक करके देखो भाई, भगवान की दुनिया में झांक करके देखो, यह एक अलग दुनिया है। अध्यात्म का संसार है वो संसार कुछ और ही है। कितनी कितनी देखो अनावश्यक, स्वामी जी महाराज फरमाते थे कि रुपए में 99 पैसा तो मनुष्य बेवकूफी से दुख को पैदा करता है, 1 पैसा है वो कोई दुख को माने तो मान ले। संत तो देखो सारे दुखों में अपनी गलती मानते हैं, पर 1% जैसे कोई मर गया थोड़ी देर के लिए दुख हो गया, हो जाए भाई, परंतु 99% दुख होता है वो हमारी बेसमझी से होता है। 99% 1 रुपए का आदमी में वो बेसमझी मिट जाए तो कोई बात नहीं। ये बेसमझी अपने को मिटानी होगी। अपने घर का वातावरण सत्संगमय बनाना होगा, भगवान की आस्था के संस्कार बच्चों को पहले से ही दे। ये बच्चे बाहर की शिक्षा ले ले करके नास्तिक हो रहे हैं। पहली बात तो यह है कि परिवार नियोजन करवा लेने से हमारे धर्म का नाश हो रहा है। बात अपने समझ में आती नहीं है, पर बात है ऐसी। और अब तो इतना ज्यादा संतुलन समाज में बिगड़ गया है कि गर्भपात को भी लोगों ने स्वीकार कर लिया और बच्चियों को मारना चालू किया, तो अब शादी की समस्या हो गई। ये बताओ, ये दुख कोई प्रकृति का दुख है क्या? ये दुख है ये समाज ने बेवकूफी से पैदा कर लिया। लड़की पैदा हो जाएगी तो हमारे विवाह करने में जोर पड़ेगा, पैसा कहां से लाएंगे? तो भाई समाज के अच्छे अच्छे लोग, पैसे वाले लोग, प्रतिष्ठित लोग बैठ करके ये विचार देखो, विचार तो ये करना चाहिए कि लड़कियां वास्तव में क्यों मारी जाती हैं, गर्भ में क्यों मारी जाती हैं, कि दहेज के कारण से। तो ये दहेज की प्रथा है, दहेज का जो लेन देन है ये खराब है, इस कारण से हमारे बच्चियां मारी जाती हैं। तो दहेज का भाव ये समाप्त तो होना चाहिए। जब पैसे वाले लोग, ऊंचे लोग, वो अपने विवाहों में प्रदर्शन न करेंगे और अपना जो पैसा है जो विवाह के अंदर लगाना चाहते वो जन कल्याण में लगाएं और विवाह को बहुत सादगी के साथ करेंगे, साहब विवाह में तो हम इतना ही लगाएंगे, राम जी ने 2 पैसा दिया है वो हम जन कल्याण में लगाएंगे। तो देखो समाज के अंदर ऐसी जागृति होने पर इतना बड़ा पाप नहीं होगा जो हिंदुओं के द्वारा अब हो रहा है। हिंदू जाति इतनी दयावती जाति, इतनी इसमें दया, इतनी क्षमा, इतनी उदारता, वो गर्भपात के समय में कहां चली गई पता नहीं। महाराष्ट्र ने संवत 2025 के चातुर्मास में ये बात कही थी, 2025 संवत, आज है 64, माने लगभग 39 वर्ष हो गए, 40 वर्ष मान लो, तब ये बात कही कि आगे दशा क्या होगी। वो बात सामने आ गई, परिवार नियोजन की बात थी, गर्भपात वाली बात उस समय नहीं आई थी। गर्भपात जैसा रोग हिंदू लोग आराम से करवाते हैं। पिछली साल की बात है, यहां ढालेगांव में आए थे कार्यक्रम में, तो एक गांव के लोग जो यहाँ पुरुषगारी के लिए आए उन्होंने एक बात कही, उन्होंने बात कही कि महाराज यहाँ लड़कियां मिलती नहीं हैं लड़कों के लिए, तो एक जाति के अंदर तो करना शायद बड़ी मुश्किल हो रही है, तो हम एक मारवाड़ी जाति एक अलग ही बना लें जिसमें ब्राह्मण हो और क्षत्रिय और वैश्य हो और ये सब मिलकर बस एक मारवाड़ी, ये मारवाड़ी जाति बस मारवाड़ी का मारवाड़ी में विवाह, ऐसा कर सकते हैं क्या? हमको भाई इतना बड़ा भारी पाप तो पहले कर लिया, अब नया पाप एक और करो। मारवाड़ी कोई जाति होती है? मारवाड़ी एक देश का नाम है, उस देश में रहने वाले सभी मारवाड़ी हैं। जिस कुल गोत्र में आप जन्म लिए हो उस हिसाब से जाति का निर्णय होगा कि मारवाड़ी जाति बना ले हम। गलती करेंगे, गलती का जब दुख आएगा तब उस दुख से बचने के लिए और पाप करेंगे। धुर बिगड़ी सुधरे नहीं कोटि करो उपाय। महाराज जी ने एक बात और कही थी जो हमको कहनी नहीं चाहिए, कहा कि परिवार नियोजन के द्वारा आप संतान कम कर रहे हो तो आपके जीवन में संयमता का दिन आने वाला नहीं है, कैसे संयम रखोगे? और यदि आपके संतान होती जाएगी स्वतः ही संयमता आ जाएगी। संयम की बड़ी आवश्यकता है और वो दो चार पांच बच्चे हो जाने के बाद में संयम अपने आप ही प्रकृति संयमित कर देगी। और एक बच्चा हो गया, दो बच्चा हो गया, कई वर्षों तक बच्चे नहीं हुए, परिवार नियोजन करा लिया, संयम का पाठ नहीं पढ़ सकोगे, संयम नहीं, संयम में नहीं रह पाएंगे। ये प्रकृति के विरुद्ध आचरण हुआ। नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं, नाना प्रकार की घरों में चिंताएं होती हैं। अरे छोटे बच्चे होते हैं, ये तो चिंता को दूर करने का साधन था, घरों में बच्चे हैं कहाँ? छोटे छोटे दादा है, दादी है, छोटे छोटे बच्चों को हम लेते थे, वो अपने गोद में खिलाते थे, उनको देख देख करके चिंताएं दूर होती थी। एक संत थे, उनके गुरु महाराज का शरीर शांत हो गया, मन में बड़ी तकलीफ हुई। एक बच्चा खेल रहा था, किसी का बच्चा, वो खेलते 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 बच्चा गिरा और गिरते वो बच्चा हंसने लगा, तो वो बैठे वो संत एकदम खिलखिला पड़े। वो उन संतों ने कहा कि उसके बाद मेरे गुरुजी के मरने का दुख नहीं हुआ, उस बच्चे को हंसते देखा मेरा दुख निकल गया अंदर से। आप बच्चे को देखोगे वो हंसेगा, आप भी हंसोगे, बच्चों के गोद में लोगे, बच्चे के मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराओगे, प्यार दोगे, प्यार, ये सब चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। बच्चा तो होता है आपकी चिंता दूर करने के लिए, आप देख दे बच्चा हो जाए मेरी चिंता हो जाएगी, कहाँ पढ़ाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे, जैसे अपने ही खुश करने वाले, दूसरा भगवान भगवान तो कोई है नहीं। सारे संसार का भरण पोषण का जिम्मेवार अपने ही आ गया। कम से कम आस्तिक लोगों में, हिंदू धर्म को मानने वालों में तो इतना भगवान के प्रति अविश्वास नहीं होना चाहिए। क्या जमाना आएगा आगे, अपने धर्म की बातें आज कर रहे हैं। सेठ जी ने कहा पहले सेठ जी से किसी ने कहा कि सेठ जी अब सतयुग आने वाला है, 2000 के बाद सतयुग आ जाएगा। कि क्यों? संबत 2000 के बाद। कैसे? कि सतयुग आ जाएगा तो क्यों भविष्यवाणी की है किसी ने? तो सेठ जी ने कहा कि जैसे हम अभी सत्संग करते हैं खुले आराम से, ऐसे हमको आराम से सत्संग करने देंगे हम तो सतयुग से बढ़कर मान लेंगे उसको। सत्संग करना मुश्किल हो जाएगा कि तुम धर्म की बात क्यों करते हो, ये तो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें आप धर्म की बात करते ही क्यों? अभी तक इतना तो दुर्दिन नहीं आया है कि अपने गीता है रामायण है ये पाठ करने में कोई मना करे, ऐसा दुर्दिन तो नहीं आया है। पर जिस चाल से चला जा रहा है उस चाल से तो भाई वो दिन भी आ सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। कारण कि अपने परिवार में तो अपना जो है बच्चों को देना, जन्म देना बंद कर दिया, और प्रकृति के नियम में उसको कहीं कहीं जन्म लेना है। तो वो भाई हिंदू धर्म में यदि परिवार नियोजन कर दिया तो वो हिंदू धर्म में नहीं आकर के दूसरे धर्म में जाएगा। तो किस अनुपात से दूसरे धर्मों की संख्या बढ़ रही है देख लो। क्या खाने पीने की अपने को ही चिंता है और लोगों को चिंता नहीं है क्या? परिवार नियोजन कराएंगे, टीवियां देखेंगे, कितनी विलासिता टीवी के अंदर। सुना ऐसा कि परिवार में एक लोग बैठ करके पूरा दृश्य देख नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं घर में तीन चार हर कमरे में टीवी लगा लेते हैं। टीवी अलग अलग रखो, आपके कमरे में अलग, हमारे कमरे में अलग, मर्जी आए तो दृश्य देखेंगे। ये क्या है, जान जान करके अपने धर्म को नुकसान करना, जान जान करके दुख पाना, ये मामूली बात नहीं है। विदेशी लोगों का और सबका एक षड्यंत्र है कि भारतवर्ष को किस प्रकार से दबाया जाए। तो सांस्कृतिक दृष्टि से इसको गुलाम बनाना चालू करो। भारतवर्ष की संस्कृति विश्व की संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ है। हमको एक किसी जानकार व्यक्ति ने बात बताई कि अपने टीवी पर जब रामायण और महाभारत का दृश्य दिखाया गया तो विश्व के लोग चकित हो गए, और सब विश्व में वो भाषा का अनुवाद करके चित्र दिखाया, उनको और अचंभा हुआ कि अरे इतना बड़ा त्याग, ऐसी संस्कृति इसकी, इसको कैसे खत्म किया जाए। तब इसके खत्म करने के लिए ऐसे ऐसे चैनल जो है वो रिले करते हैं कि लोगों की वैसे ही प्रवृत्ति है, वो दुष्प्रवृत्ति है, वो और दुष्प्रवृत्ति में लगे और अपने धर्म से वो हटे। ऐसी ऐसी षड्यंत्र पूर्वक बातें हो रही हैं, और हम लोग ऐसे दृश्य देख करके और खुद भी बिगड़ रहे हैं, बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं। घर में आप टीवी रखते हो, रखिए, बच्चों को ये समझाइए कि बेटा समाचार देख लिया, गीता देख लो, रामायण देख लो, महाभारत देख लो, ये देख लो, देखना है तो ये चीज देखो, और चीज अपने को नहीं देखनी। कि बच्चे मानते नहीं, भाई पहले बच्चे मानते क्यों नहीं है कि हमारा जीवन खुद का बढ़िया नहीं है तब बच्चे नहीं मानेंगे, अपने बढ़िया हो जाने पर दूसरे बढ़िया होंगे। क्या एकदम जीवन के साथ मखोल कर लिया, उठते हैं तो देरी से उठते हैं, सोना नहीं आता लोगों को, खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, बस बिस्तर पर पड़े हैं और उठते उठते चाय पियेंगे, उठते ही चाय पियेंगे। वो सारी देखो, जिस समय आदमी सोता है तो उस समय प्राणों की ताकत ज्यादा खर्च होती है, ये प्राण ना बहुत जोर से चलते हैं उस समय। आप देखते हो कई लोग खर्राटा मारते हैं, प्राणों को ताकत पड़ती है। तो जिस समय प्राण यूं सोते समय चलते हैं उस समय शरीर की जो प्राय गंदगी है वो गंदगी बाहर निकलने के दरवाजों पर जाकर जमा होती है प्राण के द्वारा। सुबह उठते ही लोग पेशाब करेंगे, लैट्रिन जाएंगे, कुल्ला करेंगे, वो क्या है कि जितने छिद्र हैं उन सब छिद्रों के अंदर प्राण ने शरीर की गंदगी को लाला करके इकट्ठा कर दिया, अब इसको बाहर निकालो। लेकिन भाई चाय पियेंगे, वहां पर चाय पियेंगे, चाय पियेंगे तो ये ऊर्ध्वांग की जितनी जितनी कफ की विकृतियां हैं वो सब गरम गरम चाय से पिघल करके पेट में जाएगी और नाना प्रकार की बीमारी पैदा करेगी। ध्यान ही नहीं, सोने उठने का ध्यान नहीं, निद्रा का समय कौन सा होता है, उठने का समय कौन सा होता है, कि आजकल का युग है बस, ऐसा कहकर के वो टालते हैं। उत्तम स्नान वो माना जाता है, तारा के रहते रहते स्नान हो जाए वो उत्तम स्नान होता है। उठ करके भाई सबसे पहले प्रभु का नाम ले, जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ। बंबई कलकत्ता में तो 1-2 बजे तक वो सोते हैं, सुबह 7-8 बजे उठते, 8-9 बजे उठते हैं वो। नींद तो अब शरीर को आना, सूर्यास्त के बाद में जो आदमी सोता रहता है, प्रातःकाल की संध्या और सायंकाल की संध्या में जो सोता है, उसका जो सौभाग्य ना वो भी सो जाता है। उसके भाग्य में जो बातें अच्छी हैं वो सब खत्म हो जाती है। जल्दी सो, जल्दी उठो, जल्दी भोजन कर लो सुबह, फिर बीच में कितनी बार जल पीना है, फिर शाम सायंकाल भोजन करो, भोजन करने के बाद सो उससे पहले पहले जल पियो, 2-3 बार जल पीना चाहिए, इस अंतराल से रहना चाहिए। यही खाना पीना सोना ही नहीं आता। महाराज जी ने एक बात कही कि भोगी आदमी को भोगना भी नहीं आता, भोजन परोसना नहीं आता, भोजन पहले कौन सा परोसना चाहिए। घरों में जाओ देखो, भोजन परोसेंगे पहले पहले चटनी परोस देंगे, फिर कोई साग देंगे, फिर दाल देंगे, फिर अंत में रोटी देंगे, और अंत में कोई लड्डू जलेबी बाद में देंगे। मूल जो मिठाई है ना वो पहले परोसी जाती है, वो भोजन का मूल है जो, वो पहले परोसो, फिर रोटी है, फिर दाल है, फिर साग है। पता हाथ में वो परोसा, पहले चटनी परोसी, अब ये दाल ले लो, अब रोटी ले लो, अब ये साग ले लो, अब अंत में जाके रोटी देंगे। वो प्रतीक्षा करता रहता है। भोजन करते समय में मौन रहना चाहिए, भोजन करते समय में पास में जल रखना चाहिए। भोजन करो तो बीच में थोड़ा सा जल पियो, थोड़ा सा जल पियो बीच में, मामूली सा, ज्यादा नहीं। भोजन के अंत में जल पिएंगे, अंत में नहीं पीना, अंत में आने से शरीर में स्थूलता आती है, बीच में थोड़ा जल पीना चाहिए। और भोजन करने के 1 घंटे तक जल नहीं पीना, कम से कम 1 घंटे तक जल नहीं पीना चाहिए। वो अंदर गया हुआ भोजन है, वो अंदर के सब गर्मी को सोखता है ना, तो एकदम प्यास लगती है। नहीं, अभी वो औषध का काम कर रहा है अन्न, तत्काल आप जल दे दोगे तो वो औषध का काम नहीं करेगा। हमारे ऋषि मुनियों का जो भोजन के करने का, और जो भोजन में वस्त्र में उनका शरीर को स्वस्थ रखने का जिस प्रकार से प्रकल्प है, वो सब समाविष्ट किया हमारे जीवनचर्या में, भूल रहे हैं आजकल। संस्कृति में बड़ी विकृति आ गई, इसलिए भाई अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप पर विचार करना पड़ेगा। सारे धर्म को तो सुधार नहीं सकते, सब लोगों को कोई सुधार नहीं सकते, सारे समाज को कोई सुधार नहीं सकता। तो भाई आदमी अपना सुधार कर ले, अपना सुधार कर लेगा तो व्यक्ति अपना तो काम करो पहले। कई तरह की बातें कि चाहे जैसी बात, विधवा विवाह कर लो, कितना अशास्त्रीय कार्य है। बाल बच्चे हो गए, थोड़ी उम्र छोटी है नहीं, इसका तो विवाह कर दो। अरे भाई भगवान ने इनको विधवा बना दिया तो अब इसके वैधव्य की रक्षा करो, उस विधवा के जीवन में कोई कष्ट न आए, कोई बीमारी लगी दवाई दो, कोई और उसको जरूरत है वो जरूरत की चीजें दो। परिवार वालों का ये कर्तव्य होता है कि जो घर में विधवा होती है वो विधवा हम सबको एक प्रेरणा देने वाली ऊंची जगह पर है। महाराज जी बोलते थे कि हम लोग साधु हैं वो हमारी मर्जी से हुए हैं, और विधवा जो है वो भगवान के द्वारा बनाई हुई साधु है। भगवान ने उसको साधु बनाया, संत बनाया है। उसके वैधव्य से उसने संसार का कष्ट सहा, लेकिन उसके वैधव्य से उसके कल्याण का एक रास्ता और खुला है उसका। शास्त्रों में आता है, चार पांच बच्चों की माँ है और वो विधवा हो गई और अपने जीवन का ठीक वैधव्य उसने पालन कर लिया तो उत्तम नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लोक में उसका निवास होगा। पांच बच्चों की माँ है तो भी वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लोक में निवास करेगी। हिंदू संस्कृति में विधवा का विवाह तो वेन राजा ने चालू किया था और उसको केवल शूद्रों ने ही स्वीकार किया, कुछ शूद्रों ने, सबने नहीं किया। लेकिन अब आजकल तो ब्राह्मणों में भी चल गया, महेश्वरियों में भी चल गया, अग्रवालों में भी चल गया, सब विधवा विवाह के, क्या लड़की रह नहीं सकती, ठेका ले लिया। अरे भगवान ने इसका वातावरण बनाया, भगवान पर भरोसा नहीं है? ये भगवान के भरोसे की तो बात चल रही थी, भगवान का भरोसा न करने पर भोगों का भरोसा करना पड़ेगा, भगवान का भरोसा न करने पर हमको जो भरोसे के लायक नहीं है उनका भरोसा करना पड़ेगा। कितना ही नारी जाति का अपमान हो रहा है। महाराज जी ने एक प्रश्न किया समाज के लोगों से जो कहते हैं विधवा है, और कहा कि उस विधवा के विवाह करने का हक किसको है बताओ, जिसने उसके साथ पाणी ग्रहण किया था, जिसने उस विधवा का, उस लड़की का दान लिया था वो तो मर गया, अब उस लड़की का, अच्छा दान देने वाले ने एक बार दान कर दिया, अब उसके पास तो वो वस्तु रही नहीं, अब उसको कौन दान में करेगा, किसको अधिकार है उसको विवाह कराने का, उस लड़की का विवाह कौन कराए? कोई इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि भोग परायणता का विचार रहने के कारण से लोगों को इसके अलावा कुछ दिखता नहीं कि इसका जीवन का क्या होगा, कैसे जीवन निर्वाह करेगी, कैसे क्या होगा, कैसे रहेगी। भगवान भगवान सब एक तरफ ताक में रख दिया ना, भगवान भगवान कुछ नहीं। ऐसे जो लोग होते हैं वो समाज के ठेकेदार बनते हैं कि साहब हम समाज सुधारक हैं, हम विधवा विवाह के पोषक हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। देख लो समाज में कि अरे जो बिचारी लड़कियां गर्भ में आ रही हैं उनको तो नष्ट करते हैं, और इधर विधवाओं का विवाह कर रहे हैं, क्या हालत होगी। अब तो और ज्यादा हालत खराब हो रही है, क्योंकि लड़कियां नष्ट हो गई, शादी करनी है, अब लड़कियां मिलती नहीं है समाज में, विधवाओं को ही ले। समाज कितना विकृत होगा, आगे जाकर समाज में कितनी ज्यादा गंदगी आएगी, इसका परिणाम बहुत खराब होगा कि बाबा जी चंदन खूब अच्छो लगाए हो पर सूखी जरा ठा पड़ी, चंदन सूखता है ना यहाँ, उसमें आंखों के अंदर किर 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 कर आगे पड़ता रहता है, वो लगते समय तो अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा है, ठीक है, नहीं सूखता है तब उसका कचरा पड़ता है आंखों में, तब तकलीफ होती। ऐसे ही भाई प्रारंभ में ये बातें अच्छी लगती हैं, परिणाम में अच्छी नहीं है। ये सब बातें कहां से आई, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का हम लोग यहां सांकर्य देखते हैं। पहले तो एक वर्ण संकरी होता था, अब तो यहां संस्कृति सांकरी हो गया, धर्म सांकरी हो गया ना, कितनी कितनी मिलावट, कितनी कितनी जो है चीजें बन गई, मिला दिया, खराब हो गया काम। तो भाई अब जो कुछ हो गया, अपने तो भाई अपने आप को संभालें, घर घर लागो लायणो, घर घर दाह पुकार, जन हरिया सो जानसी राखे, जन हरिया घर आपनो राखे सो होशियार। अपना घर संभाले भाई, अपन तो अपना जीवन संभाले, अपना जीवन संभालेंगे ठीक है। अब कितना तो आ गया भाई, जितने आ गया जीवन उससे ज्यादा तो अपने जीने के हैं नहीं, इसलिए अपना शेष जीवन है वो भगवान के भजन में लगाना चाहिए, भगवान की तरफ ले। एक महाराज जी बोलते थे, इधर चल के देखो तो सही, यदि आपको शांति न मिले अच्छा न लगे तो छोड़ देना भाई, वापिस आ जाना अपने, वो तो आपके हाथ की बात है, महाराज जी ने कही ये बात। थोड़ा इस मार्ग में चल करके देखो तो सही। अब यदि बताओ भगवान की तरफ चलने में सुख नहीं होता तो इतने लोग हर साल क्यों आते, कितने लोग कहां कहां से कितनी कितने कष्ट सहन करके आते हैं, अपने सबका कुल मिला करके खर्चा देखे ना तो करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, करोड़ों रुपए का टिकट है, आना है जाना है, कमाई छोड़ते हो आप, एक एक आदमी की कितनी कितनी कमाई है सबको छोड़ के आते हो, खर्चा लगता है। तो भाई अपने को भगवान पर भरोसा रख करके अपने जीवन को उन्हें सुपुर्द कर देना चाहिए। ये अपनी गाड़ी है ना रे, अपनी मोटर, मोटर चलते चलते कुछ खराब हो गई, अब क्या करो, या तो खुद ठीक कर लो, और खुद से ठीक नहीं होती है तो किसी कारखाने में ले जाके डाल दो, पर मोटर को ठीक तो करो। ऐसे हमारे जीवन रूपी मोटर है, ये खराब हो रही है, खड़खड़ कर रही है, तो अपने से सुधरती है तो अपने को सुधार लो, और अपने से नहीं सुधरती तो भगवान रूपी कारखाने में ले जाकर पटक दोगी, हे नाथ हम आपके हैं, ये जीवन की हमारी मोटर, हमारा कारखाना, हमारे ये खड़खड़ करने वाला जो ये यान है, ये यान, ये वाहन हम तो आपके यहां पर पटक दिए, आप जानो और आपका काम जाने, भगवान एक दो हथड़े में ठीक कर देगा। भगवान को बहुत बढ़िया ठीक करना आता है। ऐसे करके भाई जीवन को संभाल करके देखना है, मामूली जीवन नहीं, मामूली जगह नहीं आए हम, और हम कोई हर किसी के चंगुल में थोड़ी आए हुए हैं। एक ऐसे महापुरुष की सत्संग सुनी हुई है जिनके ऊपर हम सब बहुत बड़ा गौरव कर सकते हैं कि आज वो शरीर दृष्टि से संसार में नहीं है, परंतु उन जैसा कोई भी अपने सामने, अपनी अपनी श्रद्धा है, उन जैसा कोई अपने सामने दिखता नहीं है। ऐसे महापुरुषों की कृपा रही है यहाँ, और उनकी कृपा से ही देखो कितना अच्छा सद्भाव, उत्तरोत्तर विकास हो रहा है यहाँ गीता भवन में, अध्यात्म का विकास हो रहा है। किसी भी संस्था का विकास का मूल्यांकन लोग रुपए के द्वारा आंकते हैं, लेकिन ये महाराज जी की संस्था है, इसका मूल्यांकन अध्यात्म संपत्ति के द्वारा आंकना है, अध्यात्म संपत्ति। न कोई संस्था आपसे चंदा मांगती है, न कोई आपसे रुपए की याचना करती है, न कोई यहां पर्चे छपाए जाते हैं, न कोई सभाओं में कहा जाता है, कोई उद्देश्य नहीं है। आर्थिक दृष्टि से गरीब रहना और अध्यात्म संपत्ति से खूब भरपूर रहना, यह वास्तव में असली धनवान का लक्षण होता है। बाहर से तो भाई गरीबी, तन में गरीबी मन में अमीरी, तन पर तो रहे गरीबी और मन में रहे अमीरी, ये संतों के लक्षण है। तो ये अपना गीता भवन केवल अध्यात्म के लिए, कितनी अच्छी बात कही, अब तो नया नियम निकाल दिया ना कि भाई आप लोग यहां रहो, आप लोग भजन साधन करो, भजन साधन के लिए रहना हो, भजन साधन करो, और जो आपका खर्चा लगता है भोजन का, वो खर्चा जितना लगता है उस हिसाब से आप यहां पर दे दो, आपको संकोच नहीं होगा भोजन करने में, आपको भोजन करने में संकोच न हो, इसलिए भाई अपना पैसा दे दिया। और भजन करो, खास बात भजन, ये कौन कहेगा, क्यों कहेगा। तो भाई अब तो जो है ये साधन मिल गया, और कभी घर भी जाया हो, नहीं तो बच्चों को लोग कहेंगे तुमने माँ बाप को निकाल दिया। आजकल के क्या बताएं भाई, अब
चले तो चढ़े को टोकेंगे और पैदल चलेंगे तो पैदल को टोकेंगे, क्या करें हम। भगवान शंकर जा रहे थे, पार्वती जी जा रहे थे, बैल जा रहा था, तो गणेश जी महाराज छोटे से थे, गोदी मिली तो पार्वती जी ने कहा कि अब ये मोटा सा है, छोटा, इसको इसके ऊपर बैठा देवे। चलो भाई, उसको नांदी पर बैठा दिया गणेश जी को, गणेश जी बैठ गए अपना। रास्ते में लोग मिले कि देखो ये कैसे हैं, बच्चा तो अपनी गोद में अच्छा लगता है, इसको तो पशु पर बैठा दिया और खुद अपने आराम से चल रहे हैं, बच्चे तो गोद में रहने चाहिए, अच्छी बात है, गोद में ले लिया वापस। आगे चले तो फिर पार्वती जी ने कहा कि मैं तो थक गई, तो भगवान शंकर ने कहा इस पर बैठ जा आराम से, बच्चा तेरी गोद में है, तेरे पास है, तू बैठ जा। पार्वती जी बैठ गई, शंकर भगवान पैदल चलने लगे। फिर लोगों ने कहा कि देखो देखो कैसे है, अपनी स्त्री को तो कितना रखते हैं और खुद यूं ही चलते हैं। तो कहा कि अब करो अपन बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाऊं भाई। तो भगवान शंकर भी बैठ गए, तो कह देखो इनको दया ही नहीं आती, तीन तीन जने बैठे हो इस बैल के ऊपर, शर्म आनी चाहिए। अब तीनों जने बैठे तो लोग कहेंगे, और केवल खाली चले देखो कैसे मूर्ख है, बच्चा इनके पास में, स्त्री इनके पास में, बेचारे को बैल को, ये बैल के ऊपर बैल का उपयोग करना जानते ही नहीं। अब तीनों बैठे तो, तीनों नहीं बैठे तो, और एक बैठे तो कुछ न कुछ तो लोग कहेंगे। कोलो कमारा धाई तुम समर्थ है, दुनिया की जबान की बात तो कोई पकड़ नहीं सकता। आप अपने बाल बच्चों से प्रेम पूर्वक अनुमति ले लो, और अनुमति लेकर के बैठ करके यहां भजन साधन में समय लगाओ। और बेटे से बेटा कभी दिवाली होगी, होली होगी, और समय होगा, कोई तुम्हारे घर विवाह जरूर आएंगे, अभी थोड़े बैठे हैं हम यहां। एक तो देखो मुंह कम होगा इससे, एक घर के वातावरण से दूर हो जाओगे, ज्यादा दिमाग में एक एक जगह रहने पर आदमी घुट जाता है। और भजन साधन करोगे तो भाई अंतःकरण निर्मल ही होगा, उससे लाभ ही लाभ है। और जंगल की हवा है, शरीर की दृष्टि से भी लाभ है। अपने बना लिया खा लिया ऐसी व्यवस्था करो तो बड़ा लोर खा लो। माने संस्था का उद्देश्य यही है कि आखिर ये संस्था है तो इसका उपयोग भगवान में लगाया जाए, ये है खास बात। तो कितनी बढ़िया बात है आपके जीवन में, इससे ज्यादा तो भाई कुछ हो नहीं सकता है। तो इधर आप लोग विचार करो, और भगवान का भजन है ये अपने को, वैसे घर में भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है, परंतु थोड़ी कठिनाई आती हो तो ये बात है, करते हो तो बहुत अच्छी बात है, घर में करो तो घर में करो, पर चलना अंत में भगवान की तरफ है। भगवान की तरफ चलेंगे हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। बच्चे यदि कहें तो बच्चों को ये कहना, देखो भाई अभी तुम्हारी उम्र तो है, जब तुम्हारी उम्र हमारे जितनी आ जाए, और तुम्हारे बाल बच्चे जब तुम्हारे जितने हो जाए, तुम ये आ जाना। ऋषि मुनियों की परंपरा, बड़े बड़े राजाओं की परंपरा, राज छोड़ छोड़ करके जंगलों में जाकर रहते थे, अपना बच्चे बड़े हो गए, राजगद्दी दे दी, चले गए। जीवन में चार आश्रमों का विभाग इसीलिए तो है कि एक ही एक वातावरण में न रहे, यहां रहो वो मानो ही मत कि हम कोई गृहस्थी है, यहां रहो तो हम तो साहब बस भगवान के बैकुंठ में बैठ गए, पृथ्वी का बैकुंठ मान करके यहां पर आराम से रहो। जय सीताराम, 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 जय सीताराम,
जय सीताराम, 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 जय सीताराम,
जय सीताराम, 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 जय सीताराम,
जय